ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखावितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कार्तिक शुरू होने वाला है तो हम लोग शायद क्लास करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लंबा क्लास करेंगे ताकि हम लोग जल्दी से कवर करें। देखिए पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जितना 18 अध्याय कर सके, देखते हैं कार्तिक में क्या होता है। मेरे ख्याल से 8:15 तक हम क्लास करेंगे, दिक्कत तो होगी नहीं ऐसे। मेरे ख्याल से मतलब कम ही होगी ना, 9 बजे तक पर कोई दिक्कत नहीं होती, 8:15 तक तो करेंगे ठीक है। मतलब आज हम 3 श्लोक करने का प्रयास करेंगे, उसमें गीता के अध्याय का महात्म्य भी है। तो ये तो खाली स्टोरी है, स्टोरी दिख ली होगी आप लोगों को फोन में। श्रीमद भगवद गीता के अध्याय 18 की महिमा ये शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती ने कहा, हे प्रिय पतिदेव, आपने मुझे श्रीमद भगवद गीता के 17वें अध्याय की महिमा बताई है, अब कृपया श्रीमद भगवद गीता के 18वें अध्याय की महिमा का वर्णन मुझसे करें। इसमें केवल पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। भगवान शिव ने कहा, हे हिमालय की पुत्री, कृपया श्रीमद भगवद गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुने, जो वेदों से भी श्रेष्ठ है और असीमित आनंद देने वाली है। जब यह व्यक्ति के कान में प्रवेश करती है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देती है। शुद्ध भक्त के लिए यह दिव्य अमृत है, यह भगवान विष्णु का जीवन है और यह भगवान इंद्र और देवताओं के साथ साथ सनक और सानंद के नेतृत्व वाले महान युगों के लिए एक अमृत है। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को बहुत दूर भेज देता है। कोई और पाठ नहीं है जो इतनी जल्दी सभी पापों को नष्ट कर सकता है और इस दुनिया के 3 प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है। अब बड़ी श्रद्धा से सुनो, मेरु पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर अमरावती है, जिसे विश्वकर्मा ने बनवाया था। अमरावती का मतलब है इंद्र का स्थान। उस स्वर्गीय राज्य में भगवान इंद्र के साथ उनकी पत्नी सची को भी देवताओं के द्वारा सेवा दी जाती है। एक दिन जब भगवान इंद्र शांति से बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति वहां पहुंचा था, जिसे भगवान विष्णु के सेवक सेवा दे रहे थे। जब भगवान इंद्र ने उस सुंदर युवा व्यक्ति को देखा, वह तुरंत अपने सिंहासन से जमीन पर गिर गया। उस समय जो लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे उन्होंने उस मुकुट को उठा लिया जिसे उन्होंने पहना हुआ था और उस नए सुंदर व्यक्ति के सिर पर रख दिया। उसके बाद स्वर्ग के देवताओं ने उसकी आरती करना और गीत गाना प्रारंभ कर दिया। किसके लिए? जो नया व्यक्ति आया था। यस, महान ऋषियों ने वहां आकर अपना आशीर्वाद दिया और वैदिक मंत्रों का जाप किया और गंधर्वों और अप्सराओं ने खुशी से नाचना और गाना शुरू कर दिया। इस तरह नए इंद्र, जिन्होंने समान रूप से 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, उसने स्वर्ग के देवताओं के सेवा स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। ये पता होना चाहिए कि इंद्र वही व्यक्ति बन सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता हो। जब पहले इंद्र ने यह देखा, पहले इंद्र का मतलब है जो पहले इंद्र रहे थे, ये देखा तो वह बहुत हैरान हो गए। वह अपने आप में सोचने लगे, इस व्यक्ति ने कभी कुओं का निर्माण नहीं किया है और ना ही कुंड खोदे हैं और ना ही दूसरों के कल्याण के लिए पेड़ लगाए हैं, और जब सूखा पड़ा तो उन्होंने दान में अनाज नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पवित्र स्थानों पर कोई अग्नि यज्ञ या महान दान नहीं किया, तो उसने मेरा स्थान कैसे प्राप्त कर लिया? पूर्व इंद्र, जो जिनका भी जिनकी सरकार चली गई थी, अपने मन में बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए वे क्षीर सागर को गए। जब वे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल रहे तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे प्यारे भगवान विष्णु, अतीत में मैंने कई यज्ञ और अन्य पवित्र कार्य किए जिसके लिए मुझे स्वर्ग के राजा के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इस समय एक और व्यक्ति वहां आया है और स्वर्ग के राजा के रूप में उसने मेरी जगह ली है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई महान अद्भुत पवित्र कार्य नहीं किया, ना ही उसने कोई महान वैदिक यज्ञ किया, तो यह कैसे संभव है कि वह मेरा सिंहासन प्राप्त करने में कामयाब रहे? स्टोरी समझ में आ रही है ना? ठीक है। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय इंद्र, उस महान आत्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन किया। अपने जीवन के दौरान हर दिन उन्होंने इस अध्याय के 5 श्लोक पढ़े, पूरे नहीं, केवल 5। और उस गतिविधि के कारण, गतिविधि मतलब उस कार्य के कारण, गूगल ट्रांसलेट, उस गतिविधि के कारण उन्होंने सभी प्रकार की पवित्र कार्यों और यज्ञों के परिणाम प्राप्त किए और स्वर्ग के राजा के रूप में कई वर्षों तक आनंद लेने के बाद वे मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। एक बात ध्यान देनी होगी कि जो अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त किया उसका पतन हो गया था, अश्वमेध यज्ञ करके जो स्वर्ग की प्राप्ति किया वह नीचे गिरा, लेकिन जो भक्ति करके स्वर्ग प्राप्ति किया वह नीचे नहीं गिरा, वह भगवान के धाम गया। ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, स्वर्ग अपवर्ग मत धामा कथंचित यदि वांछति, मेरा भक्त मेरी भक्ति करके स्वर्ग मुक्ति या मेरे धाम की प्राप्ति करता है यदि वह चाहता है तो। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, वो व्यक्ति क्यों स्वर्ग में पहुंचा? क्योंकि उसकी इच्छा थी, भक्ति कर रहा था, उसकी इच्छा थी कि स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग का राजा बनूं या जो भी रहा हो। तो ये चीज हो गई, भक्ति कभी दूषित नहीं हो पाती। ठीक है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आप भी मेरा दिव्य धाम प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का स्मार्टफोन नहीं है, उसमें फाइल नहीं आई? फाइल तो खोलो ना उसे। आज सुन पा रहे हैं क्योंकि इसमें तेजी से इसलिए कर रहा हूँ कि फाइल सामने रहती तो जल्दी से कथा को पूरा कर देते हैं, फिर हम लोग श्लोक पे बोलेंगे। भगवान विष्णु के वचनों को सुनने के बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने कालिग्रानी शहर को देखा जो बहुत पवित्र है। उस स्थान पर भगवान कालेश्व निवास करते, यानी काल के ईश भगवान कृष्ण। इस शहर के पास गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण बैठा था जो बहुत दयालु था और वैदिक साहित्य के सर्वोच्च लक्ष्य और रहस्य को समझ चुका था। दैनिक वह इस स्थान पर बैठते वह उस स्थान पर बैठते और श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक का पाठ करते। जब भगवान इंद्र ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने नहीं गलत हो गया टाइपिंग उनके चरण कमलों पर गिर गया और उसने उसे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को पढ़ाने का अनुरोध किया। इंद्र ने देव ने तब श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के पाठ का अभ्यास किया था। उसके बाद वे विष्णुलोक के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे। जब उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया तो उन्होंने अनुभव किया कि राजा इंद्र के रूप में उन्हें जो आनंद मिला था वह वैकुंठ के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय पार्वती, इस कारण से महान ऋषिगण विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के इस 18वें अध्याय का पाठ करते हैं और ऐसा करने से भगवान विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति करते हैं। जो कोई भी इस गीता महात्म्य को सुनता है या उसका अध्ययन करता है वह बहुत जल्दी अपने सभी एकत्रित पापों को नष्ट कर देता है और वह व्यक्ति जो इस प्रवचन को बड़े विश्वास के साथ स्मरण करता है सभी प्रकार की पवित्र गतिविधियों और महान यज्ञों के फलों को प्राप्त करता है और सभी सांसारिक भोगों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के निवास को प्राप्त करता है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो सूखा सूखा चल रहे हैं। आप लोग सुबह प्रसाद पाइएगा तो मालूम चल जाएगा कि सत्य है कि नहीं, है कि नहीं। इस जगत में भी भक्त लोग खूब खुश रहते हैं। क्या है, वेदेशु यज्ञेशु तपस्तु चैवा दानेशु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतियेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् प्रतिचाद्यम्। 8वां अध्याय आखिरी श्लोक। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से जो कुछ भी लाभ मिलता है, जैसे आप यहाँ पे कहानी में देख रहे हो, वो एक योगी को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो इस जगत में भी सुखी रहता है भक्त और योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, उसके बाद वह भगवान के धाम में जाता है। तो इसे सामान्य भाषा में कहते हैं ना, वो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, हर तरह से लाभ भक्त को होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं भगवद गीता का श्लोक।